ओम शांति। आज एक बहुत सुंदर विषय के साथ हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं एवं ओजस्वी वाणी से संपन्न हैं। आपने भारत के विभिन्न हिस्सों में तथा विदेशों में यूके, यूएसए, जापान, रूस आदि कई देशों में अपनी आध्यात्मिक सेवाएं प्रदान की हैं। स्वस्थ जीवन शैली और मेडिटेशन के बारे में शिक्षित करने हेतु आपने कई देशों में भ्रमण किया है। 2014 में आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियान नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा को संपन्न किया। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। आप डबल डॉक्टर हैं, जिस्मानी डॉक्टर भी और रूहानी डॉक्टर भी। 91 में आपके ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई। आपने दादी प्रकाशमणि जी के साथ व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में एवं सहायक के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। आज बहुत सुंदर विषय दुआएं दो और दुआएं लो, इस विषय पर स्पष्ट करने के लिए आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी हमारे बीच में है।
ओम शांति, ओम शांति। एक बार फिर से शक्तिशाली आवाज में बोलेंगे ओम शांति। बाबा, हम बच्चों को संगम युग पर मंत्र देते हैं, सुख दो सुख लो। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि दुआएं दो दुआएं लो। तो अभी 12 अक्टूबर को जब अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली हमने सुनी, तब बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि बताई। बाबा ने कहा कि आपको भाषण करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, अगर गुणों को धारण करने में मेहनत लगती है तो भी छोड़ दो। शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो वो भी छोड़ दो। सारा दिन क्या काम करो, याद होगा कुछ भाई बहनों को। तो बाबा ने क्या कहा, सारा दिन क्या काम करो, सिर्फ एक पुरुषार्थ करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा ने कहा इसमें सब गुण शक्तियां अपने आप आ जाएंगी और संपन्न हो जाएंगे। तो इतना सहज पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा रोज रात को चेक करो, एक दिन भी करके देखो, सुबह से लेकर रात तक अगर हमने ये पुरुषार्थ किया तो हमारी स्थिति क्या रही। तो दुआएं लेना, जितना कहना सहज है उतना ही हम दुआएं लेने के पात्र बने, उसकी योग्यता क्या है वो हमें समझना है। तो हमें चाहिए बाप दादा की दुआएं, हमें चाहिए परिवार की दुआएं, और सेवा से भी हम दुआएं कमाते हैं। तो दुनिया में भी जैसे कहते हैं, एक गीत भी है ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। और दुआएं लेने का क्या महत्व है, ये अभी हम गीत में सुन रहे थे ना, बहुत सुंदर गीत हमने सुना, दिल से देते चलो दुआएं। तो उन दुआओं से क्या फायदा होता है। तो इस गीत में भी कहा कि जब हम दुआएं लेते हैं तो हमारे सर पर जो जन्मों के पापों की गठरी है वो उतरती है, वो समाप्त होते हैं, हमारे कर्म भोग जो हैं वो हिसाब किताब खत्म करती हैं ये दुआएं। तो हमारे माँ बाप बाप दादा हैं, ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ हैं और शिव बाबा हमारे परम पिता हैं। तो उनके आज्ञाकारी बनना, जैसे दुनिया में भी माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, तो आज्ञाकारी बच्चों पर माँ बाप की दुआएं नेचुरल होती हैं, उनके प्रति उनके दिल से निकलता रहता है, ये सदा सुखी रहें, ये सदा खुश रहें, ये जीवन में सदा सफल हों, आगे बढ़ें, क्योंकि वो इतना उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इतना अपने माँ बाप को समझते हैं और उनके साथ मिलकर के चलते हैं। कुछ बच्चे इसके विपरीत भी होते हैं, जो माँ बाप की आशाओं के अनुरूप उल्टे काम करते हैं, वैसे नहीं चलते, उल्टे चलते हैं, तो फिर क्या निकलता है, दुआएं या बददुआएं? फिर माँ बाप सोचते हैं कि ऐसे बच्चे होने से तो ना होते, तो कब निकलता है? तो सहज समझ में आता है कि जितना हम आज्ञाकारी बनते हैं उतना हम दुआओं के पात्र बनते हैं। तो बाबा के भी जितना हम आज्ञाकारी बनकर चलते हैं ब्राह्मण जीवन में, अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, हमारे संकल्प बोल कर्म कैसे होने चाहिए, उस अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो बाबा की दुआएं हम अनुभव करते हैं। अमृत वेला जिस विधि पूर्वक हमें करना है उस विधि पूर्वक हम करें। फिर मुरली की श्रीमत है कि हमें अपनी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, चाहे हम जहां भी रहें। बाबा कहते दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मुरली तो मिल ही जाती है, तो कोई कारण हमें नहीं देना है कि इस कारण से मेरी मुरली मिस हो गई। तो चाहे हम सुने चाहे हम पढ़ें, लेकिन पढ़ाई हमें रेगुलर पढ़नी है, पढ़ाई हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। फिर कर्म हम करते हैं तो कर्म योगी बनकर हम कर्म करें। करण करावन हार बाबा हमसे करा रहा है। भोजन भी करना है तो ब्रह्मा भोजन खाना है, बाबा की याद में बना हुआ, बाबा की याद में रहकर खाना है, और रात को सोने से पहले बाबा की याद में ही या बाबा की याद की गोदी में बाबा बोलते हैं सोना है। ये बाबा की श्रीमत है, और इस अनुसार अगर हम दिनचर्या चलाते हैं तो हमें मेहनत नहीं लगती है। पुरुषार्थ की मेहनत लगती है, पुरुषार्थ हमें सहज लगता है, ऐसे लगता है कि बाबा जैसे हमें उमंग उत्साह के पंख लगा करके उड़ती कला से उड़ा रहे हैं, या बाबा के वरदानों से हम चल रहे हैं, उसमें हम पल रहे हैं, बाबा की याद की छत्र छाया हमारे ऊपर है, ये हम अनुभव करते हैं। और कोई भी विघ्न आए, ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आते हैं, विघ्न तो आते हैं, लेकिन वो विघ्न आते हुए भी वो विघ्न हमें छू नहीं पाते, यानी हम विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। दुआओं में इतनी शक्ति है कि वो हमें विघ्न विघ्न अनुभव होने नहीं देती है। तो बाबा की आज्ञा प्रमाण चल रहे हैं तो हम ब्राह्मण जीवन को ऐसा अनुभव करेंगे। और हमने देखा जैसे ममा थी बाबा की नंबर वन आज्ञाकारी, महान आज्ञाकारी जिसे हम कहेंगे, जिन्हें बाबा की आज्ञा में कभी भी कोई प्रश्न उठा ही नहीं, बाबा ने कहा और ममा को करना ही है, चाहे कितना भी कठिन काम हो, आता भी नहीं हो, हम सभी तो सब कुछ सीखे हुए नहीं होते हैं, बहुत से काम है कि हम पहली बार करते हैं और हमें लगता है कि हमें ये आता नहीं है, और किसी ने हमें कहा तो हम क्या कहेंगे, मुझे ये नहीं आता है। पर मम्मा ने अपने मुंह से कभी बाबा को नहीं कहा कि बाबा मुझे ये नहीं आता है, बाबा ने कहा माना होना ही है, उनका समझना था कि बाबा ने कहा माना भगवान ने कहा, और मैं भगवान को कैसे मना कर सकती हूँ। तो ऐसे हम दादियों के समीप रहे, दीदियों के समीप रहे, तो कई बार सुनते थे उनके बारे में तो मोहिनी दीदी सुनाती थी उनके बारे में कि वो छोटी आयु में ही मम्मा बाबा की पालना में पली, तो मधुबन में थे वो, और उस समय एक पार्टी जा रही थी, तो पार्टी के जाने के समय ही बाबा को लगा कि बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाना है बाबा को। तो बाबा ने मम्मा को बोला कि मम्मा साबूदाने का हलवा बनाना है बच्चों के लिए। तो मम्मा ने कुछ भी सवाल किए बिना तुरंत गई रसोई में और हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब मोहिनी दीदी भी थी वहां और उनको पता था कि ये पार्टी तो अभी निकल रही है, इनकी बस है, और साबूदाने का हलवा बनने में तो बहुत टाइम लगता है, तो मम्मा कैसे बना पाएगी हलवा। और ऐसे ही हुआ कि बस पार्टी तो बाबा से छुट्टी ही ले रही थी और पार्टी का टाइम हो गया तो वो निकल गए। तो मोहिनी दीदी जो है वो तुरंत भागी भागी गई रसोई में और मम्मा को जाकर कहा, मम्मा आप जिनके लिए हलवा बना रही हो वो तो चले गए, अभी क्यों हलवा बना रही हो। तो मम्मा ने कहा ठीक है ना, बाबा ने मुझे कहा है तो मम्मा हलवा बनाएगी, फिर बाबा को जो करना है जैसे यूज करना है, और मम्मा वो हलवा बनाती रही। वो पार्टी तो बस स्टैंड तक पहुंच गई तभी भी हलवा नहीं बना। तो वो छोटे थे, मोहिनी जी सुनाते थे कि मैं छोटी थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये हलवा बना रही है मम्मा। फिर गई रसोई में बताने, मम्मा वो पार्टी तो बस स्टैंड तक भी पहुंच गई, वो बस तो निकल भी जाएगी, तो ये हलवे का क्या करोगे। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, मम्मा हलवा बना रही है। वो हलवा बनकर तैयार हुआ और वो वहां पर सारी पार्टी बस में बैठ चुकी थी, और छूटने से थोड़ा जैसे 5-10 मिनट का टाइम होता है, तो वो हलवा बन करके बाबा के पास आया। मम्मा ने डब्बे में पैक करके बाबा को भेज दिया, और जब हलवा बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने बोला अरे बच्चे भी बस में बैठे होंगे। तुरंत एक भाई को बोला तुम जाओ फटाफट, और अगर बस निकलती भी हो तो भी रोक करके ये बच्चों को डब्बा दे देना। तो वो उस समय तो ज्यादा साधन तो नहीं होते थे आने जाने के, तो वो भाई लगभग दौड़ के गया बस स्टैंड गया, और सचमुच ऐसे ही था कि बस गेट से निकल ही रही थी। वो पहुंचा जब तो उसने हाथ देख करके बस को रुकवाया, और वो भाई बहनों में से एक को वो डब्बा पकड़ाया और वो हलवा जो है वो जाने वालों को मिल गया। तो मम्मा को पूरा पक्का निश्चय होता था कि बाबा ने कहा है माना ये होना ही है, और वो हुआ, चाहे लास्ट मोमेंट पे हुआ तो भी हुआ। ऐसे ही हम जगदीश भाई के बारे में सुनते हैं ना, कैसे आज्ञाकारी बनने से हम फुल वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वो जो बाबा के बोल हैं हमारे लिए वरदान बन जाते हैं, या वो जो दुआएं हैं वही हमारा जीवन बन जाती हैं। जैसे हमारी दादियों ने, हमारे वो वरिष्ठ ने अनुभव किया, तो जगदीश भाई सुनाते थे। जगदीश भाई मुझे मालूम नहीं आप में से कितने जानते हैं, जगदीश भाई यज्ञ की सेवाओं के आदि रतन थे। जब ओम मंडली यहाँ शिफ्ट हुई, माउंट आबू में शिफ्ट हुई, ये 1950-51 की बात है, और दिल्ली में पहला सेंटर खुला था, दिल्ली में सेवाएं शुरू हुई थी, और उस समय जो पहले भाई ज्ञान में निकले, कुमार जो ज्ञान में निकले, वो जगदीश भाई थे। और बाद में उन्होंने करीब 200 किताबें लिखी हैं, अपना जितना भी साहित्य है जो हमारे लिटरेचर में मिलता है उसमें से मेजॉरिटी किताबें वो जगदीश भाई की लिखी हुई हैं। तो आप में से कितने भाई बहनों ने जगदीश भाई को देखा है। अच्छा, गिनती के हैं, मुश्किल से 10-15 हैं। अच्छा, देखा नहीं है लेकिन जानते हैं, उनके बारे में पढ़ा है, सुना है। अच्छा, जानते काफी हैं। तो जगदीश भाई जब पहली बार बाबा से मिलने आए तो उनके बारे में पहले से ही बाबा को, जो उनकी टीचर बहनें थी दिल्ली में जिन्होंने उनको कोर्स कराया और जो उनकी पालना कर रही थी, उन्होंने बाबा को उनके बारे में समाचार दिया कि बाबा ये बहुत पढ़ा लिखा कुमार है और बहुत बुद्धिमान है। तो ऐसी कोई सेवा यज्ञ की हो तो ये कर सकता है। तो बाबा को पहले से मालूम था और जब वो आए बाबा उनसे मिले और उनको पहली बार बाबा से मिलने में ही निश्चय हो गया। कोर्स किया तभी निश्चय हो गया, लेकिन मिलने से पूरा पक्का निश्चय हो गया कि हाँ भगवान इस धरती पर आया है। तो बाबा ने उनको कहा, वो किसी एक वीआईपी को लिखकर भेजना था, कुछ पत्र लिखना था, कुछ ज्ञान की बातें लिख करके भेजनी थी। तो तीन भाई थे, वो जगदीश भाई के साथ दो भाई और थे, और बाबा को पता था कि ये तीनों ही लिख सकते हैं। तो बाबा ने तीनों को बुलाया और सारा समझाया कि ऐसे ऐसे है और ये तीनों आप लिखकर कल सुबह मुझे दो, फिर कुछ करेक्शन होगा तो बाबा करेगा। तो रात को तीनों अपने अपने कमरे में गए और हुआ ये कि लाइट नहीं थी उस दिन, लाइट चली गई। तो बाकी दूसरे दो भाइयों ने सोचा कि लाइट नहीं है तो बाबा को तो पता ही है कि लाइट नहीं है, तो अगर हमने नहीं भी लिखा तो बाबा कहेगा कोई बात नहीं बच्चे अभी लिख दो, सुबह लिख दो, तो वो तो सो गए। लेकिन जगदीश भाई ने सोचा कि बाबा ने कहा है लिखना है, सुबह लिख के लाना है, तो मुझे तो चाहे लाइट नहीं है लेकिन लिखना है। मतलब वही समझा कि बाबा ने कहा है माना भगवान ने कहा है। तो उन्होंने अपने लिए वो एक दीपक जलाया और उसकी रोशनी में बैठ करके रात के 2 बजे तक माना लिखा, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा लिखा, फिर पसंद नहीं आया, फिर तीसरी बार लिखा, ऐसे करते करते फेयर करते करते उनको रात के 2 बज गए। और फिर जब संतुष्ट हो गए कि हाँ मैंने अभी ठीक लिखा है, बाबा को शायद पसंद आएगा, उसके बाद फिर उन्होंने आराम किया। और सुबह मुरली क्लास बाबा चलाते थे तो योग हुआ, मुरली क्लास हुई, बाबा का नाश्ता भी हुआ। तब तक बाबा ने कोई बात ही नहीं की कि बाबा मतलब बच्चों को बाबा ने लिखने के लिए दिया है। तो वो दो भाई तो बहुत खुश थे कि बाबा को तो याद ही नहीं है कि बाबा ने लिखने के लिए दिया, बाबा ने पूछा ही नहीं, नहीं तो मुरली के तुरंत बाद ही बाबा पूछ लेते कि बच्चे लिख के लाए हो। और जगदीश भाई जी भी चुप थे, मतलब बाबा जब पूछेंगे तभी बताएंगे। और हुआ ऐसे कि नाश्ते के बाद बाबा जब अपने कमरे में गए तो फिर बाबा ने तीनों को बुला लिया। अब तीनों को बुलाया तो उन दोनों ने तो लिखा ही नहीं था, जगदीश भाई ने ही लिखा था और उन्होंने बाबा के सामने वो दे दिया। तो बाबा ने वो पढ़ा और बाबा इतने खुश हुए कि बाबा ने उसी समय जगदीश भाई को ये वरदान दिया कि बच्चे आप जाकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आगे के लिए साहित्य के मुख्य लेखक बनोगे। और वो उनका पहला अनुभव था जो उन्होंने बाबा के लिए लिखा। और उसके बाद जगदीश भाई कहते हैं कि जैसे बाबा की वो बोल मेरे लिए वरदान हो गए और अपने आप जैसे लिखने के लिए पहले छोटी छोटी जैसे बुकलेट्स वगैरह लिखते हैं इस तरह से ज्ञान लिखना शुरू किया, फिर मैगजीन निकाली और उसके बाद जो हमारी ज्ञानामृत निकलती है अभी जो प्रेजेंट में ज्ञानामृत निकलती है उसके जो पहले संपादक रहे वो जगदीश भाई जी रहे। वो किताब पहले त्रिमूर्ति के नाम से निकलना शुरू हुई थी। तो आज्ञाकारी बनने से जैसे कि वो पूरा का पूरा उत्तराधिकार या कहेंगे हम उनकी दुआओं से वो हमें शक्तियां मिल जाती हैं या वो वरदान हमारे लिए बन जाते हैं। भक्ति में भी हम सुनते हैं, मुझे एक कहानी बहुत एक बार मैंने पढ़ी थी और मुझे ये बहुत पसंद आई थी कि कैसे जो गुरु भक्त शिष्य हुए उनको गुरुओं ने कैसे अपना वारिस बना लिया। तो उसमें एक गुरु का मिसाल आता है, उनके एक जैसे हम सुनते हैं पुराने समय में गुरुकुल चलते थे और वो गुरुकुल में जो शिष्य हैं वो शिक्षा के साथ साथ सभी प्रकार के कार्य करना सीखते थे। तो गुरु धौम्य का ये मिसाल है कि उनके जो शिष्य थे उनमें एक आरुणी नाम का शिष्य भी था जो अपने गुरु के प्रति बहुत भक्ति भाव रखता था, यानी गुरु ने जो कहा आधी रात को भी उसने कहा तो उसके लिए रात रात नहीं है। मतलब गुरु ने कहा है माना दिन को रात तो रात को दिन, ऐसा ऐसा वो शिष्य था। तो एक बार ऐसे ही वो अपने शिष्यों को कुछ अध्ययन करा रहे थे और बहुत बारिश होने लगी, तो अलग अलग ड्यूटीज थी शिष्यों की, किसी की खेतों को संभालने की ड्यूटी थी, किसी के पशुपालन की सेवा थी, किसी की बागवानी की थी, किसी के आश्रम के रख रखाव की थी, ऐसे। तो जो खेती वाले थे उनको उन्होंने बुलाकर कहा कि खेती में धान बोया हुआ है और धान को पानी लगता है, माना खेत जो है वो पानी से भरे रहना चाहिए, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि जो मेड़ बनाई हुई है चारों ओर पानी भरा रहे, तालाब जैसा बना रहे, तो इतनी बारिश में वो बह जाएगी, रुकेगी नहीं क्योंकि कच्ची है, तो अगर बह गई तो सारा पानी भी बह जाएगा, पानी रुकेगा नहीं। तो कोई जाए और जाकर के वो मेड़ ठीक, अगर कोई मेड़ में कहीं ऐसे दरार पड़ गई हो तो जाकर के उनको ठीक करे और मिट्टी डाल करके उसको पक्का करके आए। लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि किसी भी शिष्य की हिम्मत नहीं हुई और किसी ने भी गुरु को इसका जवाब नहीं दिया कि वो खेत पर जाएगा और ये काम करेगा। लेकिन अरुणी ने बोला कि गुरुजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, हालांकि खेती का उसका कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि गुरुजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ और मैं ये कार्य करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम अकेले कैसे करोगे, तुमसे हो जाएगा? तो उसने कहा कि अवश्य, आपने कहा है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। और वो गया खेत पर गुरु ने उसको ये समझाया कि देखो रात होने वाली है तो तुम ये काम जल्दी करके रात होने से पहले ही वापस आ जाओ, क्योंकि बारिश और बढ़ेगी ऐसा देखने में मौसम से लगता है। तो वो पहुंचा वहां खेत पे, तो देखा सचमुच गुरुजी ने जो अंदाज लगाया था वो गलत नहीं था, कई जगह से उसमें दरार पड़ चुकी थी मेड़ में और पानी बहुत तेजी से बहकर जा रहा था। तो उसने मिट्टी लाई अलग अलग जगहों से और उसे लगानी शुरू की, तो तीन तरफ तो उसने पूरा पक्का उसको बंद कर दिया, लेकिन एक तरफ ढलान थी तो वो जितना मिट्टी लगाने की कोशिश करता था उतना ही वो तेजी से बारिश हो रही थी, तो वो मिट्टी बह जाती थी और नहीं रुक रही थी। बहुत कोशिश की उसने लेकिन वो मिट्टी नहीं रुकी। अब उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। तो उसको उस समय ये समझ में आया कि मैं ही लेट जाता हूँ यहां से, जहां से पानी बह रहा है वहां मैं ही लेट जाता हूँ तो पानी खेत में रुका रहेगा, पानी बहेगा नहीं। तो वो खुद ही लेट गया, माना खुद को ही मेड़ बना लिया उसने, और सचमुच पानी रुक गया खेत में और सारी रात बारिश होती रही। बाद में गुरु को पता चला कि वो तो वापस लौटा ही नहीं, सारी रात नहीं आया, तो उनको चिंता हुई कि क्यों वापस नहीं आया। तो फिर उन्होंने कुछ शिष्यों को अपने साथ लिया और वापस गए, वहां खेत पर गए, तो देखा कि वो शिष्य जो है वो खुद ही लेटा हुआ है खेत के उधर, और बारिश तो अभी बंद हो चुकी है, लेकिन अभी अगर वो उठता तो निश्चित रूप से वो पानी फिर से बहने लग जाता, तो वो उठा नहीं। और गुरु ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने जो अपने शिष्यों को साथ में लाए थे उनसे वो सारी मिट्टी रखवाई। उस समय तो वो मिट्टी रुक गई क्योंकि अब बारिश बंद थी, और फिर वो उठा तो देखा उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था, क्योंकि सारी रात वो बारिश में ऐसे ही लेटा रहा और पानी पूरी तरह से उसकी पीठ पर लगा हुआ था। तो मतलब गुरु उससे इतने प्रसन्न हुए, जो भी उसने किया इतना मुश्किल कार्य असंभव कार्य वो उसने किया सिर्फ गुरु के कहने पर, तो गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी मेरे आश्रम की सेवाएं हैं और जो भी मेरा आगे का भी कार्य है वो भविष्य में उसकी जिम्मेवारी या उसके उत्तराधिकारी तुम हो। तो वो आज्ञा पालन करने का, और गुरु ने जितना भी मुश्किल कार्य किया उसको मुश्किल ना समझकर, क्योंकि गुरु ने कहा है तो मुझे करना ही है ऐसा समझकर उसने किया, तो कितनी दुआएं और वो दुआओं ने किस योग्य बना दिया, उस योग्य बना दिया जो जो हम उसके काबिल अपने आप को नहीं समझते। तो ये बाबा की दुआएं हमारे लिए काम करती हैं। हम देखते हैं कई बार कि हमें लगता है कि बाबा की श्रीमत इतनी मुश्किल है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम ये नहीं सोचते कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा है इसलिए हमें करना ही है। जो हमने देखा, मम्मा को देखा, दादियों को देखा, या जो भी हमारे वरिष्ठ भाई बहने हैं, उन्होंने वो सब किया। कई बार दादियां सुनाती थी, बाबा अचानक बोलता था कि बच्ची तुमको उधर जाना है सेवा पर, और हम कहते थे बाबा कपड़े नहीं धुले हुए हैं, तैयार ही नहीं है। मतलब एक घंटे के अंदर अंदर हमको निकल के जाना होता था, क्योंकि ट्रेन का टाइम होता था जहां जाना है। तो अभी तो तैयारी ही नहीं है, मानो हम ऐसा सोचते थे कि तैयारी ही नहीं है, कैसे जाएंगे। कम से कम बाबा दो दिन पहले तो कहे, लेकिन बाबा ने कहा है जाना है, माना। बस फिर हम सोचते नहीं थे और हम चले जाते थे। जहां बाबा सेवा पर भेजता था वहां हम चले जाते थे, जिसको हमें भी बाबा कई बार कहते हैं अचानक और एवर रेडी, एवर रेडी रहो। कोई भी परिस्थिति अचानक आ सकती है, और उस अचानक में अगर हम एवर रेडी हैं तो हम विजयी हो जाएंगे। हम तैयार हैं तो हम विजयी हैं। तो फिर हम हमारे मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, या ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो अगर हम प्रश्नों में गए तो फिर हम बाबा की दुआएं अनुभव नहीं करते हैं, और हम बाबा की आज्ञा का वो पालन भी उस तरह से नहीं कर पाते हैं। और कई बार हम सुनते हैं कि जो दुआएं हैं वो मरे हुए को भी जिंदा कर देती हैं, उसको जीवदान देती हैं। और ये प्रैक्टिकल में कई बार देखने में भी आता है। हम सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ किसी का, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, उसमें गाड़ी तो पूरी तरह से खत्म, लेकिन जो उसमें बैठा होता है वो साफ बच जाता है। और कई बार तो ऐसा कि खरोंच भी नहीं आती है। तो फिर क्या कहते हैं, कोई पुण्य किए हैं, पुण्य किए माना दुआएं कमाई हैं। तो वो दुआएं ऐसे समय पर लग जाती हैं जो उनके लिए वो जीवदान हो जाता है, जीवन बचाने वाला हो जाता है। कई बार हम सुनते थे बाबा दादियों को कहते थे, बाबा जब दादियों से मिलते थे, दादियों से मुलाकात जैसे हम कहते हैं ना, तो बाबा दादियों को कहते थे कि सभी परिवार की दुआएं, ब्राह्मण आत्माएं, आत्माओं की दुआएं आपकी आयु को बढ़ा रही हैं। तो दादी जानकी 104 साल तक थे हमारे बीच में, और हमने देखा कि लास्ट तक भी, माना एक महीना पहले तक ही, दादी लगभग एक डेढ़ महीना ही हॉस्पिटल में रही, उसके पहले तक भी दादी ने सेवा की। दादी बेंगलोर गई, पूना गई, सारे प्रोग्राम किए जो भी प्रोग्राम बने हुए थे, और उसके बाद करके पूरा प्रोग्राम करके वापस आई तब। तो क्योंकि दादी हिम्मत रखती थी और बाबा की उतनी ही मदद दादी को अनुभव होती थी, और सबकी सेवा की जो दुआएं दादी के साथ थी, तो इतनी लंबी आयु तक भी दादी ने निर्विघ्न सेवा की। और भी दादियों को, जैसे गुलजार दादी थे हमारे, दादी प्रकाशमणि जी थे, सभी दादियों ने लंबी आयु जिया और बाबा की निर्विघ्न सेवा की। तो ये दुआएं कमाने का फल है। ऐसे हम लौकिक दुनिया में भी सुनते हैं, आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन जो प्रसिद्ध एक्टर हैं बॉलीवुड के, मैंने ही समझती कि आप में से कोई नहीं जानता होगा उनको, लगभग सभी जानते हैं। तो जब वो अपने कैरियर के पीक पर थे तो वो बहुत पॉपुलर थे, बहुत लोकप्रिय थे भारत के अंदर, जो अभिनेता लोकप्रिय होते हैं उनमें से वो एक थे। और उसी समय एक फिल्म की शूटिंग करते करते उनको चोट लग गई, माना एक जैसे एक एक्सीडेंट वो इंसिडेंस हो गया, उनके पेट में वो चोट लगी और पेट में शायद आंत फट गई, कुछ ऐसा हुआ, और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया तब तक उनका काफी खून जा चुका था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, तो काफी बॉटल खून के चढ़ाए गए उनको, ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तो डॉक्टर यही कहते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं। और जब पूरे देश को पता चला, क्योंकि ऐसे लोगों की खबरें तो तुरंत आग की तरह जिसे कहते हैं वो फैलती हैं, तो जब पूरे देश को पता चला तो सभी ने, वो किसी भी धर्म के थे, किसी भी राज्य के थे, खाली मुंबई के लोग नहीं, लेकिन पूरे भारत के या तो पूरे विश्व के लोग उनको जानते थे, सभी ने अपनी अपनी तरह से उनके लिए प्रेयर्स की, चाहे मंदिरों में, चाहे चर्च में, इवन मुस्लिम भी, क्योंकि वो तो एक अभिनेता थे और सभी के बीच में लोकप्रिय थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो डॉक्टर समझ रहे थे कि हम नहीं बचा पाएंगे इनको, इतना ऐसा भयानक एक्सीडेंट है, लेकिन उनका जीवन बच गया। और न सिर्फ बचा, लेकिन आज तक भी वो सेवा दे रहे हैं। तो जो दुआएं जो हैं वो चमत्कार कर सकती हैं, जिसको कहा, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि रॉकेट को सबसे तेज माना जाता है गति में, लेकिन दुआओं की गति रॉकेट से भी तेज है, यानी इतनी तेजी से वो दुआएं लगती हैं। तो हमको भी, हम भी कई बार जब हमारे परिवार के कोई विशिष्ट ब्राह्मण बच्चे बीमार होते हैं तो क्या कहते हैं, हम उनके लिए योग लगाएं, है ना। तो योग लगाना माना क्या, उस आत्मा के लिए दुआएं करना, हम उसे मनसा सेवा कहते हैं। दुनिया वाले लोग उसे प्रेयर करना कहते हैं कि इनके लिए हम प्रेयर करें, है ना, इनको हम दुआएं दें। और बाबा हमें कहते हैं मनसा शुभ भावना देनी है उस आत्मा को, हमें उस समय वो सहयोग देना है। और जब हम उसे वो सहयोग देते हैं तो सचमुच उसे वो अनुभव होता है, और वो कर्म भोग उसके लिए सूली से कांटा हो जाता है। कई बार लगता भी नहीं है, हम बड़ी दादी जी को देखते थे, दादी जी के बहुत समीप में रही हूं, तो लास्ट के दिनों में जब दादी जी बीमार थे, हालांकि दादी जी अपनी रीति से वो कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी कभी दादी को पूछेंगे ना कि दादी जी आपकी तबीयत कैसी है, तो दादी कहती थी मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम कहते थे कि दादी, या डॉक्टर भी जो मिलते थे दादी को, दादी आप कहाँ ठीक हैं, आप तो आप बेड पर हैं। तो दादी कहती थी, मना दादी के कहने का मतलब था आत्मा, मैं आत्मा तो बिल्कुल ओके हूँ, ये जो हिसाब किताब है वो तो किसका है, शरीर का है। तो दादी तो इस भाव से कहती थी मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, तो कभी नहीं दादी के मुंह से निकलता था कि मुझे कोई दर्द है, या मुझे कोई कष्ट है, मुझे कोई तकलीफ है, और ना ही दादी के वो चेहरे पर होता था कि दादी कोई बहुत तकलीफ में है। तो वो शक्ति कहाँ से थी दादी के अंदर, बाबा की और परिवार की दुआएं, कि वो कर्म भोग दादी को कभी अनुभव होता ही नहीं था, इतना सहज वो उसे पार करते हैं। हाँ, देखने वाले को लगता है कि हाँ ये तो बहुत बीमार हैं, ये शायद इतने कष्ट से गुजर रहे होंगे, शायद इनको इतना दर्द हो रहा होगा, लेकिन सचमुच वो फीलिंग हमने देखी नहीं। और ये अनुभव मेरा खुद का भी रहा कि एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ और मैं आईसीयू में थी, तो मैंने देखा, क्योंकि हम भी काफी समय से यज्ञ में सेवा कर रहे थे, और जहां भी मैंने सेवा की, हॉस्पिटल में सेवा की, माना हमने निस्वार्थ सेवा की, समर्पित होकर के बाबा के यज्ञ में सेवा की, तो मैं कहूंगी कि उन दुआओं ने मुझे सचमुच उस समय इतनी मदद की कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं आईसीयू में हूं, मुझे ये भी नहीं लगा कि मुझे दर्द है। देखने वाले को बिल्कुल लगता था, जो सामने आते थे वो मेरे से पूछते थे बहुत तकलीफ होती होगी आपको, ना फ्रैक्चर हो गया है, आपको इतनी चोट लगी है बहुत तक, और मुझे सुई की नोक चुभ जाए इतना भी दर्द नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि बाबा ने जैसे मुझे अपनी गोदी में रखा है और मैं हॉस्पिटल के बेड पर नहीं, फूलों की सेज पर सोई हुई हूँ। तो इतना अच्छा बाबा हमें अनुभव कराते हैं और उससे पार कराते हैं। तो ये दुआओं की शक्ति है जो हमारी हर परिस्थिति को हमें सहज पार करा देती है। तो हमें दुआएं लेने का अधिकारी बनना है, उस योग्य अपने आप को बनाना है, तो बाबा से हम कैसे योग्य बनेंगे? अब परिवार के संपर्क में जब हम आते हैं तो जैसे कहा कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, या सुख देना और सुख लेना, वो हम कब कर पाएंगे? जब हम उनकी आवश्यकता को समझेंगे। अगर हम किसी की आवश्यकता को समय पर पूरा कर देते हैं, आवश्यकता के प्रमाण किसी को हमने सहयोग दिया, तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं कि वो सचमुच मुश्किल में है, तकलीफ में है, और उसी समय हमने उसकी मदद कर दी। जैसे हम डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर के पेशे को हम क्या कहते हैं? दुआएं कमाने वाला पेशा कहते हैं। कहते हैं ना, कई पेशे ऐसे हैं जिनमें धन नहीं कमाते, लेकिन उसके उससे ज्यादा क्या कमाते हैं? दुआएं कमाते हैं। तो कैसे दुआएं कमाते हैं? क्योंकि जब मरीज उनके सामने आते हैं तो वो बहुत दुख में होते हैं, और रोग के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत कमजोर होती है, और डॉक्टर जब उनको दवाई देता है, उनको उस दर्द से मुक्त करता है, या जो भी ऑपरेशन करता है, या जो भी उनकी काउंसलिंग करता है, उनको समझाता है, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। इसलिए उनको नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, क्योंकि भगवान दुख हरता सुख करता है, तो ऐसे ही वो भी दुख हरते हैं और सुख देते हैं। तो बाबा ने भी हमें उस पोजीशन पर रखा है। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, तो हमें बाबा क्या कहते हैं? हम क्या हैं? विश्व की आत्माओं के लिए कल्याणकारी हैं, उनके उद्धार मूरत हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। और पूर्वज आत्माओं का क्या कर्तव्य होता है? जैसे घर में भी जो पूर्वज होते हैं वो समझते हैं ना कि बच्चों की आवश्यकता है, तो हमें ये करना है इनके लिए, फिर चाहे वो खुद का भी त्याग क्यों ना करना पड़े। अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाने से उनका भविष्य बनेगा, तो माँ बाप अपने भी पेट काट करके बच्चों के लिए करते हैं कि नहीं, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इनका भविष्य उतना अच्छा बनाना है, माना वो करना है। तो ऐसे ही कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आती, चाहे हमारे लौकिक परिवार है, चाहे हमारा ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, तो हम उनकी नब्स, बाबा कहता है इसको नब्स को परखें कि उसको क्या चाहिए। वो संतुष्ट कब होगी? जब उसकी उस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। जैसे एक बार बाबा ने मुरली में कहा, कोई आत्मा को शांति चाहिए, वो बहुत परेशान है और वो हमारे पास आती है कि इनसे मैं बात करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मेरा मन जो है ये हल्का हो जाएगा इनसे बात करके, या ये मुझे कोई ऐसी बात सुनाएंगे जिससे मुझ में हिम्मत आ जाएगी। वो उस उम्मीद से हमारे पास आते हैं और वो हमने उनकी पूरी की। फिर बाद में हम ज्ञान सुनाएंगे तो वो ज्ञान सुनने के लिए भी फिर तैयार हो जाएंगे, लेकिन पहले हमें क्या देना है उनको? जो अनुभव हमसे चाहते हैं। पानी के प्यासे को अगर हमने 36 प्रकार का भोजन दे दिया तो क्या होगा? वो संतुष्ट होगा? उसको क्या चाहिए? पहले पानी चाहिए। तो इसको बाबा कहता है कि देखो उस आत्मा को क्या चाहिए। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हम ये नहीं समझ पाते और फिर हम उनको सीधा ज्ञान की हैवी डोज दे देते हैं और उससे वो और ही भारी हो जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, माना उतना वो संतुष्ट नहीं हो पाते। तो ये एक तो हम जिन भी आत्माओं की सेवा करते हैं, जब हम सेवा में हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना है। फिर संस्कारों का जो हमें मिलाकर चलने का, माना उसमें ही हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, तो कई बार हम वो भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हर एक आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। ये वैरायटी झाड़ है बाबा कहता है, तो कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं है, कोई भी दो आत्माओं का पार्ट इस ड्रामा में एक जैसा है ही नहीं, सबका अलग अलग पार्ट है और अलग अलग संस्कार भी हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो हमें संस्कार मिलाकर चलना है, संस्कार मिलन की रास जिसे बाबा कहता है, तो उसी को बाबा संगठन भी कहते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? कई बार हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर पाते, लेकिन कई बार जिन आत्माओं से हमारा हिसाब किताब होता है उनसे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर कोई मुझ पर क्रोध कर रहा है या कोई मुझे गाली भी दे रहा है, यही होता है ना, या कोई मेरा अपमान कर रहा है। मुश्किल परिस्थितियां कौन सी लगती हैं हमें? यही लगती हैं कि कोई हम पर गुस्सा करे किसी बात को लेकर के, या कोई हमारी गलती निकालता रहे, है ना, हमारी कमी दोष निकालता रहे और दूसरों के सामने सुनाता रहे, उसको हमें बदनाम करे, ऐसा होता है कई बार। तो यही हिसाब किताब के रूप आते हैं हमारे सामने। तो क्या ऐसी आत्माओं से भी हम दुआएं ले सकते हैं? क्या कहेंगे, ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो बाबा ने कहा था कि ऐसी आत्माओं से भी हमें दुआएं लेनी है। कैसे लेनी है? कि वो आत्मा अपनी कमजोरी बता रही है कि मैं तो परवश हूं, माया के वश, जो माया के वश होगा वही ऐसा काम करेगा। तो मैं तो माया के वश हूं, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप तो शांति देने वाले हो, आप तो शीतलता का गुण अनुभव कराने वाले हो, तो हमें उनके प्रति रहम दिल बनना है, सहयोगी बनना है। और वो कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा उनको क्षमा करो। शिक्षा और क्षमा, ये दो चीजें हैं। कई बार हम शिक्षा देने लग जाते हैं लेकिन क्षमा करना भूल जाते हैं। और आजकल आत्माओं को शिक्षा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्षमा चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप क्षमा कर देंगे, वो क्या भी कर रहे हैं तो वो क्षमा ही उनके लिए शिक्षा हो जाएगी। और उसी में ही सहन शक्ति भी है, उसी में ही समाने की शक्ति भी है। अगर हमने क्षमा कर दिया तो सबसे पहला फायदा तो हमको ही होता है, हमारा ही दिल साफ हो जाता है उन आत्माओं के प्रति, बुद्धि हमारी स्वच्छ रहती। क्योंकि अगर किसी की भी कमजोरी हमने अपने चित्त पर रख ली, किसी ने मेरे साथ बुरा किया और मैंने अपने मन में रख लिया, तो मेरी भी बुद्धि स्वच्छ तो नहीं मानी जाएगी ना। अभी भी संडे की मुरली में बाबा ने हमें यही बात समझाई कि फिर हम क्या करते हैं, बुद्धि में रख लेते हैं तो वर्णन किए बिना नहीं रहेंगे। अगर कोई बात मेरी बुद्धि में समा गई तो चाहे हम एक के सामने बोले, चाहे हम चार के सामने बोले, लेकिन बोलेंगे जरूर। और अगर हमने वर्णन किया किसी की ग्लानि की, हम समझते हैं कि वो गलत है और उसकी गलत बात को ही मैं गलत कह रही हूं, और फिर अब बाबा ने कहा आपने एक कहा, वो गुंबद की तरह काम करता है। जैसे गुंबद में हम आवाज करते हैं तो क्या होता है, वो कई गुना बड़ा होकर के वो आवाज लौटता है। तो ऐसे ही आप एक बार करेंगे वो 10 बार करेगा, है ना, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो समस्या बढ़ेगी ना। तो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे गुलाब का फूल है वो बदबूदार खाद से भी खुशबू ले लेता है, बढ़ता तो बदबूदार खाद में है लेकिन देता क्या है, खुशबू देता है। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो बदबू को खुशबू में बदल सकती है। तो फिर वो परिवर्तन की शक्ति जब प्रकृति में है तो क्या हमारे में नहीं हो सकती कि हम किसी की भी अवगुण को, बुराई को परिवर्तन कर लें और उसमें से भी दुआएं ले लें। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर विश्व महाराजन तो गुलाब के फूल को बनाना चाहिए आपकी बजाय, कि कम से कम उसके अंदर तो अकल है, उस फूल के अंदर भी इतनी अकल है कि वो बदबू को खुशबू में बदल सकता है। तो बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि साइंस भी क्या करती है, वेस्ट को बेस्ट बनाती है। आज की जो साइंस की पावर है वो भी यही है ना। तो हमें भी ये परिवर्तन शक्ति को यूज करना है, और जब हम ये परिवर्तन करते हैं तब हमने दुआएं भी दी, केवल ली नहीं लेकिन उस आत्मा को हमने दुआएं भी दी। क्योंकि वो हमने जो सहन कर लिया, समा लिया, ना हमने कुछ कहा ना उसको वर्णन किया बल्कि और ही रहम किया उनके ऊपर, तो वो उस आत्मा के लिए प्रेरणा देने वाला बन जाता है। उसे हिम्मत आती है कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो आगे के लिए हो सकता है 2 बार 4 बार वो आपके साथ ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम बाबा के श्रीमत अनुसार ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो उस आत्मा में भी परिवर्तन आ जाएगा। और ऐसा बहुतों में देखने में आता है, बहुत परिवारों में ये अनुभव करते हैं कि शुरू में वो कैसे विरोधी होते हैं, जैसे रावण होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब देखते हैं कि ये तो हम इनके साथ कैसा भी करते हैं, ये तो फिर भी हमसे प्यार से चलते हैं, स्नेह से चलते हैं, हमारे पूरे सहयोगी हैं, इनके व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं आता, तो धीरे धीरे उनमें भी फिर वो परिवर्तन आ जाता है। एक बार एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, वो किसी सन्यासी को यहाँ लाना चाहते थे मधुबन में, और उनके ब्रह्मा कुमारी के बारे में अच्छे मत जैसे कहेंगे मान्यता होती है वो नहीं थी, माना उनको लगता था कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार करती हैं, तो वो हम इनके स्थान पर क्यों जाएं, जब हम मानते ही नहीं हैं तो हमें क्यों जाना है। तो जब वो भाई उनको निमंत्रण देने के लिए जाते थे तो उसको किसी ना किसी तरह से मतलब मिले ही नहीं, ऐसा टाल देते थे, मिलते ही नहीं थे, मतलब मिलने का अपॉइंटमेंट ही नहीं देते थे। लेकिन वो भाई भी छोड़ता नहीं था, जब भी कुछ मौका होता था तुरंत फिर से पहुंच जाता था वहां पर। तो जब ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने सोचा चलो एक बार मिल ही लेते हैं, मिलने में क्या बुराई है, चलो आने दो उसको। तो फिर वो भाई उनसे मिला, तो उस समय जब मिला तब उन्होंने कुछ अपनी बातें कह करके, जैसे थोड़ा अपमान करने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें कह करके और वो भाई को फिर भेज दिया कि तुम आगे से बिल्कुल मेरे को निमंत्रण देने मत आना, मुझे नहीं जाना है आबू, आप ये बात समझ जाओ। फिर भी उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, है नहीं आप वहां चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपने कभी देखा नहीं है ना इसलिए आपको ऐसा लगता है। उसने अपनी रीति से उनको समझाने की कोशिश की कि मेरी बहुत इच्छा है कि आप एक बार चलें, तो मैं फिर से आपको निमंत्रण दूंगा, आप ऐसे नहीं समझना, ठीक है ना। भेजा किसी तरह से उसको, लेकिन फिर वो कुछ समय के बाद जब यहाँ कोई कार्यक्रम था तो वो भाई फिर निमंत्रण देने पहुंच गया तो उनको लगा कमाल है इसकी सहन शक्ति, इसको कुछ लगता ही नहीं है, ना मैं इससे मिलना चाहता हूँ और ना मैं इससे सीधे मुंह बात करता हूँ, फिर भी भाई पहुंच जाता है मेरे पास। फिर एक बार मान ही लिया उन्होंने आखिर कि ठीक है तुम इतना ही पीछे पड़े हो तो एक बार मैं आ जाता हूँ तुम्हारे साथ आबू, है ना, लेकिन तुम मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करना, मैं सिर्फ देखने आ रहा हूँ। ठीक है आप सिर्फ देखने ही आइए। और वो यहाँ आए उसके कारण, और यहाँ दो दिन रहे, और जब उन्होंने यहाँ सब देखा तो मधुबन तो है ही परिवर्तन भूमि ना, कैसी भी आत्मा इस भूमि पर आए उसका मन ना बदले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस उनको समझ में आ गया, और इतना अच्छा अनुभव उन्होंने मधुबन की स्टेज पर सुनाया, बोला इस भाई ने जो व्यवहार मेरे साथ किया उससे मुझे प्रेरणा मिली और आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो ये आत्मा मेरी गुरु हो गई। तो देखिए 10 बार उसने सहन किया लेकिन फल कितना अच्छा मिला। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि सहन करने में दुआएं हैं। कई बार हम सोचते हैं हम कितना सहन करेंगे, बहुत सहन कर लिया, क्या हम ही मरेंगे क्या, है ना, हमारी ही इसमें लिखा है क्या कि मतलब मुझे ही मरकर चलना है, मुझे ही ऐसा चलना है। तो बाबा कहते हैं आप किसकी आज्ञा से सहन कर रहे हो, किसकी आज्ञा से ये सब कर रहे हो, किसने हमें ये श्रीमत दी है, किसने दी है, बाबा ने दी है ना। तो जो भी हमने किया ये बाबा की श्रीमत से किया, तो बाबा की शक्ति, इसीलिए सहन शक्ति कहते हैं कि वो बाबा की शक्ति हमें मिलती रहती है और वो सहन करना हमें सहन लगता ही नहीं, अगर सही अर्थों में हम सहन कर रहे हैं। और ऐसा बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव है जो सही रीति से बाबा की आज्ञा प्रमाण चलते हैं, तो वो दुआएं हमें मिलती रहती हैं और हमें पुरुषार्थ में उड़ाती रहती हैं और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बाबा के वरदानों से चल रहे हैं, बाबा के वरदानों में पढ़ रहे हैं और वही हमें फिर बाप समान बनने की मंजिल तक भी पहुंचा देंगे। ओम शांति।